नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन SCO देशों से आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान किया है। चीन के तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने सदस्य देशों से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने वाले देशों को जवाबदेह ठहराने को कहा।
भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अस्वीकार्य है। उन्होंने आतंकवाद को मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट और एकजुट संदेश दिया। साथ ही 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल आर्थिक, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग पर विचार विमर्श किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में सतत वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन से जुड़े ताजा घटनाक्रमों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए हाल में किए गए प्रयासों के प्रति समर्थन दोहराया।
कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा की सराहना की और इसे वैश्विक पटल पर भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति को यूरेशियन क्षेत्र में भारत के प्रभाव को मजबूत करने और प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। यह 3 दिन का सम्मेलन देश में एक मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री बुधवार को कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 48 से अधिक देशों के 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का भी शुभारंभ करेंगे। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता विकास को बल मिलने और समुदाय आधारित उद्यमों के विकास में तेजी आने की संभावना है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर संस्था के बैंक खाते में 1.05 अरब रूपये भी हस्तांतरित करेंगे। पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से संचालित इस प्रणाली से जीविका दीदियों के बैंक खातों में सीधे तेज और अधिक पारदर्शी तरीके से धनराशि का हस्तांतरण सुनिश्चित होगा। इसे सुगम बनाने के लिए 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन और रूस ने ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के उन प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के प्रस्ताव को खारिज कर ईरान का समर्थन किया, जिन्हें यूरोपीय देशों ने एक दशक पहले किए परमाणु समझौते के अंतर्गत कम किए थे। चीन, रूस और ईरान के विदेश मंत्रियों के हस्ताक्षर वाले पत्र में कहा गया कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के तथाकथित स्नैपबैक व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिबंधों को स्वतः बहाल करने का कदम कानूनी और प्रतिक्रियात्मक रूप से गलत है। और खेल में भारत ने बिहार के राजगीर में आयोजित हॉकी एशिया कप में कजाकिस्तान को 15-0 के बड़े अंतर से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। कल शाम खेले गए अपने आखिरी लीग मैच में भारत की टीम ने चारों क्वार्टर में नियमित अंतराल पर गोल दागे। इस शानदार जीत के साथ आखिरी लीग मैच में भारत पूल ए में 9 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।